आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी उम्मत के तनाजुर में और पाकिस्तान के तनाजुर में बिलखसूस नौजवानों से ये तवक्को कि वो पर्सनली ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ में एक्सेल करें और उसमें बड़ा नाम पैदा करें और पैसा कमाएं और एंटरप्रेन्योर बने, ये एक बहुत ही छोटे दर्जे की और अगर आप मुझे इजाजत दें तो अदना दर्जे की एक अचीवमेंट है जिसकी आपसे तवक्को रखी जाएगी। इस वक्त आप लोगों को और आप नौजवानों से जो तवक्को है वो इससे बहुत बड़ी तवक्को है, और वो तवक्को ये है कि पूरी की पूरी उम्मत का फिक्र करना है, पूरी की पूरी जो हमारी पाकिस्तान बिलखसूस और पूरी उम्मत, उम्मत बिलुमूम, इन सब का फिक्र करना इस वक्त आज के नौजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सिलसिले में मैं हमेशा आजकल जिन नौजवानों से गुफ्तगू करता हूं उनसे ये अर्ज करता हूं कि पिछले 30-40 साल हमारे मुल्क में बहुत ही इस लिहाज से बदकिस्मत रहे हैं कि वो नस्ल जो मेरी नस्ल थी और मुझसे मुत्तसिल नस्ल थी उनसे बहुत ज़्यादा बुनियादी गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि आप नौजवान जो सामने बैठे हुए हैं, हमने आपको बहुत कोई आला दर्जे के रोल मॉडल क्रिएट करके नहीं दिए, हमने आपको कोई खास किस्म की डायरेक्शन जो कि हमारी नेशनल कॉज और हमारे दीनी कॉज के साथ मुताबकत रखती हो, हमने आपको ऐसी कोई डायरेक्शन फराहम नहीं की। अगर आप थोड़े से तवज्जो के साथ पिछले 30-40 सालों में देखें तो हमारे मुल्क में खास तौर पर एक बहुत बदकिस्मत बात यह हुई है कि हमारे मुल्क का जो हमारे इस इलाके का, हमारी इस तहजीब का जो वैल्यू सिस्टम था वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में याद है कि एक जमाना था कि गो पैसे की अहमियत तो मुआशरे में हमेशा से थी, लेकिन फिर भी किसी शख्स को बड़ा या छोटा पैसे की बुनियाद पर नहीं किया जाता था, बल्कि बड़ा और छोटा होने की बुनियाद ईमानदारी थी, दयानतदारी थी, सच्चाई थी, बेलॉस होना था, कंपैशनेट होना था। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 30-40 सालों में चाहे उसकी वजूहात कोई भी हो, हमारे मुल्क का वैल्यू सिस्टम टोटल अपसाइड डाउन हो गया, और हमने ये देखा कि हमने इसको एक अपने डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि जो शख्स बड़ी गाड़ी पे बैठ के आएगा वो बड़ा है, जिस शख्स के पास ब्रांडेड चीजें होंगी वो बड़ा है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा वो बड़ा है, जिसके पास ओहदा बड़ा होगा वो बड़ा है। इस सारे का असर ये हुआ कि हमारी आने वाली नस्ल, यानी आप सब लोगों के रोल मॉडल, आप सब लोगों का किबला जो है वो बिल्कुल अपोजिट समत पर हो गया। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मुआशरे में इंडिविजुअली अच्छे लोग मौजूद होते हैं, इसीलिए तो मुआशरा बरकरार रहता है, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहां ये सबसे बड़ी गलती हुई है और आपको इस सारे के असरात नजर आ रहे हैं। आप हमारे पाकिस्तान के सारे इदारे देख लीजिए, असेंबली से, सेनेट से शुरू होकर नीचे तक, और इसके अलावा किसी और शोबा जिंदगी में आप देख लीजिए, यही कदरे मुश्तरक, यही एक वैल्यू हर जगह पर एग्जिस्ट करती है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा है, और जिन कौमों के अंदर ये वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाए उनके फिर रोल मॉडल और आइडियल्स चेंज हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे भी रोल मॉडल और आइडियल्स चेंज हो गए हैं। मैंने एक स्टडी की कि बच्चे जिनकी उम्र 8-9 साल के करीब है, उन बच्चों से रैंडमली पूछा कि आप बताएं किस जैसा बनना चाहते हैं। आप हैरान होंगे कि 70-80% बच्चों को तो यह सवाल ही समझ में नहीं आया। जब उनसे यह पूछा गया तो वो आएं बाएं शाएं, अम्मी की तरफ देखना शुरू कर दिया, अब्बू की तरफ देखना शुरू कर दिया, उनको यह बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आई, अगर मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊं जो कि मेरे पास अभी है, इंशाल्लाह वो पब्लिश भी होगा डाटा, तो आप हैरान होंगे कि उसमें से कुछ लोग फुटबॉल के प्लेयरों की तरह बनना चाहते थे, कुछ अदाकारों की तरह बनना चाहते थे, कुछ हिंदू भारत के हर अदाकारों को की तरह बनना चाहते थे, कुछ हमारे मुल्क के गुलूकारों की तरह बनना चाहते थे। किसी एक शख्स ने भी ये मुझे नहीं कहा कि वो फलां साहबी की तरह बनना चाहता है। किसी एक बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं कायदे आजम की तरह बनना चाहता हूं, मैं अलामा इकबाल की तरह बनना चाहता हूं, मैं अब्दुल सत्तार ईदी की तरह बनना चाहता हूं। किसी शख्स, किसी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा, और इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पूरे मुआशरे के अंदर नौजवानों के लिए रोल मॉडल और आइडियल्स ही चेंज हो गए हैं। मैं आपसे यह दरखास्त करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप वो गलतियां मत कीजिएगा जो गलतियां मेरी नस्ल ने की हैं। और मैं इस बात का इतराफ करता हूं, अभी पिछले दिनों कन्वेंशन सेंटर में एक हुआ तो मैंने यही बात उनसे अर्ज की, तो एक बुजुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि आप तो नौजवानों को बोलकर खराब कर रहे हैं। आप तो नौजवानों को बुजुर्गों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत आजिजी के साथ कहा कि मैं तो इस बात की अपनी पूरी अपनी जनरेशन के बिहाफ पर आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं तो वाकई इस बात को समझता हूं कि हमने 30-40 सालों के अंदर सवाए इस वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करने के पैसे से ही इंसान बड़ा होता है और हमने कोई वैल्यू सिस्टम प्रमोट नहीं किया इज्तमाई तौर पर, जिसके नतीजे में हमारी नौजवान नस्ल के अंदर वो तमाम प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं जिसका सारे के सारे लोग गिला कर रहे हैं। और दूसरी जो बहुत बड़ी गलती मेरी नस्ल के लोगों से हुई है इज्तमाई तौर पर, वो ये हुई है कि हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया। हमने अपने तालीमी सिस्टम के अंदर, हमारे समाजी सिस्टम के अंदर, हमारे पूरे माशरे के अंदर हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया। मां ने अपने बच्चे को कहा तुमने फर्स्ट आना है। स्कूल वालों ने जो सारे के सारे जिनकी पोजीशंस आई थी उनके बोर्डों पे नाम लिख लिख के पूरे चौराहों के अंदर लगा दिए। फर्द को फर्द के लिए तैयार किया। मां बाप का, स्कूल का, इदारों का सबसे बड़ा पर्पज यह था कि मेरा बच्चा जो है ये 1100 में से 1100 नंबर ले, ये मेडिकल कॉलेज में जाए, फिर ये यूएसएमएलई करे, फिर ये मुल्क से बाहर जाए। यानी फर्द को हमने तरबियत ही इस बुनियाद पर की कि तुमने खुद तरक्की करना है, लेकिन फर्द को यह नहीं सिखाया कि कैसे वो मुआशरे के लिए एक मुफीद इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। तो मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये बात गुजारिश करना चाहता हूं, बच्चे वही करते हैं जो वालदैन करते हैं, लेकिन मैं आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूं कि हम लोगों ने जो कुछ किया और जो गलती की, मेहरबानी करके आप वो गलती मत करना, आप वो बिल्कुल गलती मत करना। और आप इन दो चीजों को याद रखना, दुनिया के अंदर कोई भी कौम, कोई भी फर्द, कोई भी मुआशरा इस बुनियाद पर बड़ा नहीं होता कि उसके पास मटीरियल कितना है, वो इस बुनियाद पर बड़ा होता है कि उसके वर्चूज कितने स्ट्रांग हैं, उसकी रवायात कितनी स्ट्रांग है, और उसका जो है अपनी तहजीब के साथ और अपने अकायद के साथ कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जो भी कौम, जो भी फर्द, जो भी मुआशरा इस बुनियाद पर अपनी तरक्की का दारोमदार उसका रखता है तो वो मुआशरा हमेशा तरक्की करता है। और दूसरा, अब आप ये बात प्लीज याद रखिए, और इस बात को मैं बहुत ही इनफॉर्मली आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप याद रखिए कि आप सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अब खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद दौलत कमाने के लिए, खुद एक बहुत आसूदा जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हुए। आपके और मेरे जुम्मे ऐसी जिंदगी गुजारना है जिससे कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि इसकी वजह से मुआशरे के अंदर यह तब्दीलियां आई हैं। इस बात को समझने के लिए एक तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपको इस अपनी उम्र के इसी हिस्से में इस बात का फैसला करना है कि दो ग्रोह हैं दुनिया के अंदर, आप उन दोनों ग्रोह में से किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। एक ग्रोह वो है जो ये कहता है कि हमारी जिंदगी मौत पर खत्म हो जाएगी, जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद हम मट्टी बन जाएंगे और हम खत्म हो जाएंगे। एक ये ग्रोह है। इस ग्रोह के रोल मॉडल वो हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मसलन कारून वगैरह, और आजकल के जमाने के भी लोग जिनके पास दौलत ज्यादा है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए कि इस ग्रोह का यह ख्याल है कि उनकी जिंदगी मौत तक है और मौत के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और ग्रोह है जो ग्रोह नबियों के पैरोकारों का ग्रोह है, और वो ग्रोह यह कहता है कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होगी बल्कि मौत के बाद एक और जिंदगी आने वाली है, उसमें जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हमें जवाब देना पड़ेगा और हमारे एक एक एक्ट के हम रिस्पॉन्सिबल होंगे मौत के बाद, और असल कामयाबी और नाकामी तो है ही वो जो मौत के बाद की जिंदगी की है। एक दूसरा ग्रोह है, आपको आज ही बैठे बैठे अपने दिल में यह फैसला करना है कि आपका ताल्लुक किस ग्रोह से है। अगर तो आदमी पहले वाले ग्रोह से है फिर तो ऑब्वियसली उसके रोल मॉडल वही होंगे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत और माल इकट्ठा किया। लेकिन अगर हमारा ताल्लुक दूसरे ग्रोह से है तो फिर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि फिर आप याद रखिए कि एक मुसलमान की, एक ईमान वाले की जिंदगी जो है वो अय्याशी वाली जिंदगी नहीं है। यहां रहते हुए एक मुशक्कत की जिंदगी है, यहां रहते हुए एक मुसलसल हां ब्लिस वाली जिंदगी है, सुकून वाली जिंदगी है, रहमत और इत्मीनान वाली जिंदगी है, अमन वाली जिंदगी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जिंदगी, अगर आप यह समझें कि जिंदगी के अंदर कोई टर्बुलेंस नहीं होगी, जिंदगी के ऊपर कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, मुझे कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, तो ये फिर वो जिंदगी उन लोगों की जिंदगी है कि जिन जो कि उस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जिनका ख्याल यह है कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बस मैं यही कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता था। यहां बहुत सारे जय्यद हजरात तशरीफ रखते हैं और मुझे यकीन है कि आप सब उनकी बातें सुनना चाहेंगे। बस मैं अपनी बात को समराइज करते हुए आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से यह समझता हूं कि पिछले 30-40 सालों में हमारे मुल्क के अंदर वो नस्ल जिनकी उम्र मेरे बराबर है या मुझसे थोड़े से कम है या ज्यादा है, उनसे जो दो बुनियादी गलतियां हुई हैं वो बुनियादी गलतियां कहीं आप में ट्रांसफर ना हो जाएं। कहीं आप भी उसको कंटिन्यू करने लग जाएं, क्योंकि जिस वक्त भी मैंने जब से जब पैदा हुआ हूं तो हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। और पाकिस्तान मसाइल का शिकार इस वजह से है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफराद ने अपने वैल्यू सिस्टम को बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन कर दिया है। तो मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए हमारी गलतियों से सबक सीखिए और आप अपनी जिंदगी के लिए अपना नस्बुलैन यह बनाइएगा कि पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता, कॉम्पिटेंसी से, वर्च्यूज से और उन चीजों से बड़ा होता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और दूसरी बात मैंने आपको यह बताया है कि अपने गिरेबान में झांक के हम सब देखें कि फर्द सिर्फ फर्द के लिए पैदा नहीं किया गया बल्कि फर्द पूरे मुआशरे के लिए पैदा किया गया है। हमें आई मी और माइन के पैराडाइम से वी आवर और अस के पैराडाइम में शिफ्ट होना है। हर रोज शाम को हमने देखना है कि मेरे आज के एक्ट की वजह से मेरे मुआशरे में, मेरे इर्द गिर्द के लोगों में क्या तब्दीली आई है। और तीसरी बात मैंने आपसे यह अर्ज की है कि मेहरबानी करके इसका फैसला आज ही कीजिए कि आप इंसानों के किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, वो ग्रोह जो ये समझता है कि मौत से पहले पहले जिंदगी खत्म हो जाएगी, या वो ग्रोह जो ये समझता है कि एक यौम दीन है जिसमें हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसका हमें आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को मोहब्बत से सुना।